नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं ईआईडी पारी इंडिया लिमिटेड पर।
हाँ, हमारे पास बेस्ट मेट इन्वेस्टमेंट सर्विसेज की एक रिपोर्ट है 11 जुलाई 2025 की,
और हमारा मकसद है ईआईडी पारी के बिजनेस को समझना, इसका वैल्यूएशन और क्यों इसे एक डीप वैल्यू होल्डिंग कंपनी माना जा रहा है।
बिल्कुल, और सबसे खास बात यह है कि इसमें इतना भारी डिस्काउंट क्यों है।
हाँ, ये बात वाकई सोचने वाली है। क्या आप जानते हैं कि इस कंपनी का मार्केट कैप, मतलब बाजार मूल्य, उसकी सबसे बड़ी संपत्ति कोरोमंडल इंटरनेशनल में जो उसकी हिस्सेदारी है, उससे भी कम है।
हाँ, यही तो कमाल की बात है। इसका मतलब ये हुआ कि निवेशक को इसके जो बाकी कारोबार हैं, जैसे चीनी, इथेनॉल, वो सब एक तरह से लगभग मुफ्त मिल रहे हैं।
चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। तो ईआईडी पैरी सिर्फ एक चीनी कंपनी नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बेसिकली एक होल्डिंग कंपनी है, और इसकी सबसे कीमती चीज है कोरोमंडल इंटरनेशनल में करीब 56% हिस्सेदारी।
और कोरोमंडल तो जानी मानी एग्रोकेमिकल और फर्टिलाइजर कंपनी है।
हाँ, भारत की लीडिंग कंपनियों में से एक। अब देखिए, कोरोमंडल में ईआईडी पैरी की हिस्सेदारी का आज का बाजार मूल्य लगभग 38,400 करोड़ रुपए है।
ओके।
जबकि ईआईडी पैरी का खुद का मार्केट कैप, जैसा आपने कहा, करीब 20,500 करोड़ ही है।
बाप रे, ये तो मतलब
50% 60% का सीधा सीधा डिस्काउंट हो गया।
हाँ, यही है होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट। और ये भारत में जो सामान्य 30-40% का डिस्काउंट होता है, उससे कहीं ज्यादा है।
तो बाजार इतना कम क्यों आंक रहा है इसे? क्या इसके अपने बिजनेस अच्छा नहीं कर रहे?
देखिए, कोरोमंडल के अलावा इनके अपने बिजनेस भी हैं। चीनी इनका पारंपरिक काम है।
हाँ, जो काफी साइक्लिकल रहता है, मतलब उतार चढ़ाव वाला।
बिल्कुल, हाल में घाटे में भी था, पर हाँ, सुधार की उम्मीद तो है।
और इथेनॉल का क्या सीन है? वो आजकल काफी चर्चा में है।
हाँ, इथेनॉल मतलब डिस्टिलरी बिजनेस, वो इनका ग्रोथ इंजन है। सरकार की जो ब्लेंडिंग पॉलिसी है, उससे इसे काफी फायदा मिल रहा है।
अच्छा।
रिपोर्ट बताती है कि FY25 में इसका रेवेन्यू 38% बढ़ा है।
स्पिरुलिना वगैरह बनाते हैं,
और एक कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ग्रुप भी है शायद,
CPG।
हाँ, वो नया फोकस एरिया है। पारिस ब्रांड नाम से चीनी, गुड़, बाजरा वगैरह बेच रहे हैं। FY25 में उसमें भी 65% की ग्रोथ दिखी है।
अच्छा, पर इन सब का मिलाकर भी वैल्यू कितनी होगी?
रिपोर्ट के हिसाब से इन सारे बिजनेसेस की कुल वैल्यू शायद 3,000 से 3,500 करोड़ के आसपास होगी।
जो कोरोमंडल वाली 38,400 करोड़ की हिस्सेदारी के सामने तो काफी कम है।
बिल्कुल, इसीलिए सम ऑफ द पार्ट्स यानी SOTP वैल्यूएशन यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है।
SOTP मतलब सारे हिस्सों को जोड़कर जो वैल्यू बनती है।
हाँ, तो SOTP के हिसाब से ईआईडी पैरी की फेयर वैल्यू, या कह लें आंतरिक मूल्य, करीब 2,330 रुपए प्रति शेयर निकलती है।
2,330 रुपए प्रति शेयर, जिसमें से करीब 2,160 रुपए तो कोरोमंडल से ही आ रहे हैं, और बाकी 170-200 रुपए इन दूसरे बिजनेस से।
और अभी शेयर चल रहा है 1,150 रुपए के आसपास, तो ये तो SOP वैल्यू पर लगभग 50% का डिस्काउंट हुआ।
एग्जैक्टली। और रिपोर्ट का जो 2,500 रुपए का टारगेट है, वो इसी उम्मीद पर है कि एक तो ये डिस्काउंट कम होगा, शायद 20-30% तक रह जाए।
और दूसरा?
दूसरा ये कि SOP वैल्यू खुद भी बढ़ेगी कोरोमंडल और इथेनॉल के अच्छे प्रदर्शन से।
अच्छा, रिपोर्ट में आगे के लिए क्या अनुमान है अगले कुछ सालों के लिए?
हाँ, रिपोर्ट में FY26 से FY28 तक, मतलब अगले 3 साल के लिए, रेवेन्यू में करीब 8-10% सालाना ग्रोथ, और EPS यानी प्रति शेयर कमाई में लगभग 15% सालाना ग्रोथ का अनुमान है। FY28 तक EPS करीब 84 रुपए तक जा सकता है।
ठीक है, तो ये भारी डिस्काउंट कम कैसे हो सकता है? मतलब क्या ट्रिगर हो सकता है? रिपोर्ट में कुछ बताया है?
हाँ, कई चीजें हो सकती हैं। सबसे बड़ा और सीधा तरीका तो है कोरोमंडल का डीमर्जर या स्पिन ऑफ,
मतलब कोरोमंडल को ईआईडी पैरी से अलग कर दिया जाए।
हाँ, और उसके शेयर सीधे ईआईडी पैरी के शेयरधारकों को मिल जाएं, इससे वैल्यू तुरंत अनलॉक हो सकती है।
लेकिन क्या प्रमोटर्स, मुरुगप्पा ग्रुप, ऐसा करेंगे? वो तो थोड़े कंजर्वेटिव माने जाते हैं।
हाँ, ये बात सही है, वो पारंपरिक रूप से सतर्क रहे हैं। हालांकि उन्होंने पहले कर्ज कम करने के लिए हिस्सेदारी बेची है, जो दिखाता है कि वो डिसिप्लिन्ड हैं, पर बड़े रिस्ट्रक्चरिंग के कोई संकेत फिलहाल तो नहीं है।
तो और क्या तरीके हो सकते हैं?
दूसरा ये हो सकता है कि कोरोमंडल की कुछ हिस्सेदारी बेच दें और उस पैसे से शेयर बायबैक करें, या स्पेशल डिविडेंड, या फिर ईआईडी पैरी के जो अपने बिजनेस हैं, खासकर इथेनॉल, उनका मुनाफा तेजी से बढ़े, इससे भी फोकस बढ़ेगा,
और कोरोमंडल से ज्यादा डिविडेंड मिलना,
हाँ, वो भी मदद करेगा कैश फ्लो बढ़ाने में।
तो कुल मिला के मामला ये है कि वैल्यू तो है, पर वो होल्डिंग कंपनी स्ट्रक्चर की वजह से दबी हुई है।
सही कहा, भविष्य में इसकी कीमत बढ़ने के लिए दो चीजें जरूरी हैं। ایک تو اس کے اپنے بزنس، خاص کر ایتھنول کا پردرشن، اور دوسرا کوئی ایسی کارپوریٹ ایکشن جس سے یہ ڈسکاؤنٹ کم ہو۔
تو انت میں ایک سوال من میں آتا ہے،
ہاں،
اتنی بڑی چھوٹ ہے، اتنے سارے سمبھاوت ٹریگر بھی ہے، پھر بھی نکٹ بھوشیہ میں ایسی کون سی ایک گھٹنا ہو سکتی ہے جو بازار کو مجبور کر دے کہ وہ ای آئی ڈی پیری کی اصلی قیمت پہچانے؟
یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ شاید کورومنڈل کا کوئی بڑا اعلان، یا ایتھنول سے امید سے کہیں زیادہ منافع۔ یہ ہولڈنگ کمپنی انویسٹنگ کا ایک دلچسپ پہلو۔